एबा चा इंद्रियाणि दश एकम् च पञ्च च इन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगात् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा इच्छा देश सुख दुःखम् संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा इच्छा देश सुखं दुःखं संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् संगात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ महाभूतानि स्थूल तत्व अहंकार मिथ्या अभिमान बुद्धि बुद्धि अव्यक्तम अप्रकट एव निश्चय ही च भी इंद्रियाणि इंद्रिया दश एकम ग्यारह च भी पंच पांच च भी इंद्रियो गोचरः इंद्रियों के विषय इच्छा इच्छा द्वेषः घृणा सुखम सुख दुखम दुख संगात समूह चेतना जीवन के लक्षण धृति धौर्य एतत् यह सारा क्षेत्रम कर्मों का क्षेत्र समासेन संक्षेप में सविकारम अंतक्रिया सहित उदाहृतम उदाहरण स्वरूप कहा गया। अनुवाद पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन गुणों की अपकृत अवस्था दस इंद्रिया तथा मन पांच इंद्रिया विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संगत जीवन के लक्षण तथा धौर्य इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतक्रिया है विकार कहा जाता है। तात्पर्य महर्षियों वैदिक सूक्त संदास एवं वेदांत सूत्र सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों का इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। उसके पश्चात पांच ज्ञानेन्द्रिया है नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेन्द्रिया वाणी पांव हाथ गुदा तथा लिंग लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रियों कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों का पांच विषय है गंध स्वाद रूप स्वर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कर्म क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कर्म क्षेत्र का समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतक्रियाएं विकार है जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां है। चेतना तथा धौर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार तथा बुद्धि का प्राकट है। ये सूक्ष्म तत्व भी कार्य कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। जैसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है यह और आगे प्रकृति के तीन गुणों की अप्रकट अवस्था का की सूचक है। प्रकृति की अव्यक्त गुणों का प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकार सहित जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन या अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार की परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है बढ़ता है टिकता है संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है लेकिन क्षेत्रों के ज्ञाता क्षेत्रों का उससे भिन्न रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता में तीन प्रकार का ज्ञान के बारे में वर्णन है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो भगवद गीता का प्रथम छह अध्याय में कर्म के बारे में वर्णन है और उसके एक से छह तक अध्याय में कर्म के बारे में वर्णन है, फिर 7 से 12 अध्याय तक भक्ति का बारे में वर्णन है और 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान के बारे में वर्णन है। तो ये ज्ञान के बहुत महत्व है इसके लिए और साथ साथ में भक्ति का महत्व उससे अधिक है, तो इसके लिए भक्ति का विभाग को बीच में रखा गया है। हमारा आचार्य लोग बताते हैं अगर कोई हमारा पास मूल्यवान वस्तु होता है, जिस प्रकार सोना चांदी कोई भी मूल्यवान वस्तु होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी में रखते हैं तो नीचे भी कुछ उसका होता है, ऊपर भी कुछ होता है, नीचे कुछ बेस होता है, ऊपर ढक्कन होता है, बीच में ये वस्तु सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि इसके लिए भगवद गीता में पहले कर्म के बारे में बताया गया, बाद में ज्ञान के बारे में बताया गया। भक्ति मूल्यवान वस्तु होने के कारण उसको क्या किया गया है, उसको बीच में रखा गया है। तो इस अध्याय से ज्ञान के बारे में वर्णन है। तो विशेष करके 8 से लेकर 12 श्लोक तक भगवान क्या ज्ञान है वर्णन करते हैं, उसके बाद बताते हैं वो ज्ञान को छोड़ के बाकी सब अज्ञान है। तो ये गीता का ज्ञान का बहुत महत्व है। ये गीता का जो महात्म्य है वो हमारा पद्म पुराण में वर्णन है। प्रत्येक अध्याय पढ़ने के उपरांत क्या उसमें लाभ होगा उसके बारे में वर्णन है और उसके बाद श्रीपाद शंकराचार्य ने भी गीता महात्म्य लिखे हैं, जिसका उद्धृत श्रील प्रभुपाद ने हमारा भगवद गीता में किया है। तो शंकराचार्य बताते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किमने शास्त्र विस्तरे ये स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनी श्रुताहा। तो बोलते हैं कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं है और उनका बुद्धि भी इतना तेज नहीं है, स्मरण शक्ति बहुत क्षीण है, इसके लिए बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं और शंकराचार्य बोलते हैं इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल भगवद गीता ही पर्याप्त है। लेकिन उसके लिए वो बताते हैं उसमें ध्यान और मनोयोग से उसको अध्ययन करना चाहिए। जब भी आप ध्यान से और मनोयोग से गीता को अध्ययन करेंगे तो जितना ज्ञान आपको आवश्यक है सब प्राप्त हो जाएगा, दूसरा कोई शास्त्र को अध्ययन करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद शंकराचार्य बताते हैं मलिन मोचनम पुंसम जल स्नान दिने दिने स्वीकृत गृतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। बोलते जिस प्रकार नित्य प्रतिदिन आप जल से स्नान करके शरीर को आप धो सकते हो, पवित्र कर सकते हो। शरीर में जो मेल मेल लगा हुआ है उसको धो सकते हो। इस प्रकार बोलते हैं स्वीकृत गृता मत स्नानम संसार मलो नाशनम। अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसको अपना जीवन में आचरण करेंगे तभी आपका भी ये संसार रूपी मल से आप उद्धार हो जाएंगे। एक होता है सिद्धांतिक ज्ञान, अनुभव ज्ञान और आचरण। खाली सिद्धांतिक ज्ञान बोले इंफॉर्मेशन, खाली इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, उसको रियलाइजेशन करना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है तभी जाके कल्याण होगा। खाली जानकारी से कुछ नहीं होगा। जैसे हमको सब जानकारी हो गया, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का अंश है, हम भगवान का सेवक है, ये जानकारी से कुछ लाभ होगा लेकिन पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। जब हम सेवक होके मालिक का पूर्ण रूप से सेवा में लग जाएंगे तभी वो लाभ होगा। तो उसको बोलते हैं आचरण और अनुभव। इसके लिए शंकराचार्य बोलते हैं मलिनम मोचनम पुंसम जल स्नान दिने दिने स्वीकृत गृतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो ये भगवत गीता का ज्ञान का महत्व है। उसके आगे बता रहे सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भोक्ता दुग्धामृत महत। और बोलते हैं सभी उपनिषद का ज्ञान है गाय के समान है और उसको दोने वाला क्या है, दोग्धा गोपाल नंदन। भगवान कृष्ण और उपनिषद रूपी ज्ञान को दूध को दूह रहे हैं। गाय का भी दूध देता है जब भी उसका बछड़ा उसका सामने होता है तो वात्सल्य प्रेम उस पर उमड़ पड़ता है और दूध देता है। तो पार्थ वश्च बछड़ा कौन बना, पार्थ अर्जुन, और पार्थ वश्च सुधीर भोक्ता, भोक्ता खाने वाले कौन है, दुग्धमता महत। जो विद्वान लोग है भगवान भक्त है वो दुधामृति अमृत को पान करते हैं। जय श्री श्री गौ नित्याय भगवान की जय, श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, जय श्री श्री सीताराम लखन भक्त हनुमान महाराज की जय। तो मंदिर का पट पुनः 8:30 बजे खुलेगा और ठाकुर जी का शयन आरती होगा। जो लोग फिर से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं और भगवद गीता के ऊपर कुछ चर्चा चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वर्ष सुधीर भक्ता दुग्धा मृत मत। उसके बाद शंकराचार्य बताते हैं एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक देव देव की पुत्र एव, एक मंत्र नामानि यानि कर्म पे को देव देवस्य सेवा। तो बोलते हैं एक शास्त्र ही जगत को ज्ञान प्राप्त करके कल्याण करने के लिए काफी है। वो क्या है, देवो की पुत्र गीतम, एको शास्त्रम देवो की पुत्र गीतम, एको देवो देवो की पुत्र एवो। और एक नाम उनका नाम है और क्या करना है, उनका केवल सेवा करने से मनुष्य का सभी प्रकार का कल्याण हो जाएगा। तो गीता का ये महात्म्य है कि गीता इसमें इतना पर्याप्त मात्रा में ज्ञान भगवान दिए कि जिसको अध्ययन करके जीवन में आचरण करके मनुष्य ये हो सकता है। कुछ दिन पहले गीता जयंती का दिन था तो हमारा मंदिर में गीता का पूरा 18 अध्याय का पाठ हो रहा था। तो प्रत्येक गीता क्या चीज है उसको भी शंकराचार्य प्रत्येक अध्याय का अंत में बताते हैं। आप लोग उस दिन हो पढ़े होंगे तो गीता का जो होता है उसका अंत में शंकराचार्य लिखते हैं ओम तत्सत इति भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे। अभी 13 अध्याय होगा तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान योग नाम 13 अध्याय। तो उसमें बोलते हैं ओम तत्सत इति, ये ओम तत्सत भगवत गीता के 17 अध्याय में भी भगवान बताते हैं। तो बोलते हैं जो भी ऋषि मुनि लोग किसी भी कार्य आरंभ करते हैं तो ओम तत्सत इति, ओम तत्सत का उच्चारण करके आरंभ करते हैं और अंत में भी ओम तत्सत कहते हैं और ओम तत्सत के लिए ही करते हैं। तो ओम का अर्थ है श्रीमद् भागवतम के 12वां स्कंद में बताया गया है, ओम तीन अक्षर को मिलकर है, ओ उ म। और चैतन्य चरितामृत में ये तीनों अक्षर का क्या अर्थ है बताया गया है, ओ बोलेगा तो कृष्ण, उ बोलेगा तो राधा रानी, म बोलेगा तो जीवात्मा, तत् बोलेगा तो वही, सत बोलेगा तो शाश्वत और सत्य। ओम तत् सत, ओम बोलेगा तो राधा कृष्ण और जीवात्मा, और वही सत्य है और सनातन में हमेशा रहने वाले है। और श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद सु, तो ये हमारा एक श्लोक आप सुना होगा, स्मृति श्रुति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। ये जितना वैदिक शास्त्र है ना उसका कई विभाग किया गया है। पहला है श्रुति, श्रुति बोलेगा तो जो वेद और उपनिषद है, जो भगवान ने बोला है और वो सुन के वो आता है, उसके नीचे जो ऋषि लोग लिखा है उसको स्मृति बोलते हैं, पुराणों को भी स्मृति में आती है। उसके बाद आता है इतिहास, महाभारत रामायण इतिहास है। तो ये फिर जो है ये कुछ शंकर संप्रदाय के जो लोग होते हैं, शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर ही थे और भगवान का आदेश से ब्राह्मण का रूप में आए और वेद को प्रतिष्ठा करके गए। उस समय इससे पहले गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने बोला अहिंसा परम धर्म और वेद को अभी मत मानिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। तो उस समय वेद को कोई नहीं मान रहा था, वेद को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने शंकर को ही शंकराचार्य के रूप में भेजे और उन्होंने वेद को प्रतिपादित किया, वेद को ही परम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये गीता जो है वो श्रुति में नहीं आता है, महाभारत तो इतिहास में आता है, लेकिन वो बोलते हैं वो उपनिषद है क्योंकि वो भगवान स्वयं बोल रहे हैं और भगवान बल कृष्ण स्वयं भगवान है वो बोल रहे, इसके लिए भगवद गीता को शंकराचार्य ने उपनिषद का दर्जा दिए। इसके लिए वो बोलते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु। और उसमें क्या है, ब्रह्म विद्याया, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म जो शब्द है आत्मा परमात्मा बड़ा ऐसा अनेक को, ये संस्कृत ऐसा भाषा है, एक शब्द का कई अर्थ होता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं ये जो गीता में क्या है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान है। और क्या बोलते हैं, योग शास्त्र बोले, इसमें सब देखें कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग, बोले भगवान से जुड़ने का शास्त्र है। और क्या है वो, फिर अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो उसमें अलग अलग अध्याय है। तो इस प्रकार गीता का ज्ञान का महत्व है। तो यहां पर भगवान ये अभी ज्ञान का विभाग चालू हुआ है। तो इस अध्याय का पहले अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछा, बोला हे भगवान ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये मैं जानने की इच्छुक हूं। उसके बाद उनका जो संशय था, अर्जुन का जो प्रश्न था उसका अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ये जो शरीर है क्षेत्र है, जीवात्मा किसी काम करने के लिए ना, कोई भी काम करने के लिए क्षेत्र चाहिए, बोलेगा तो जमीन चाहिए, आप चाहिए खेती कीजिए, कंपनी खोलिए, जो कुछ स्कूल खोलिए, विद्यालय खोलिए, कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए ना। तो ऐसा ही जीवात्मा बहुत छोटा है, एक बाल का 10,000 भाग करने से जितना छोटा होगा ना, बाल का अग्रभाग इतना छोटा है। तो उसको जब भी भगवान से विलोक होकर आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसको क्षेत्र चाहिए, शरीर होगा तो भोग करेगा ना, उसको भोग करना है। जैसा हमको कुछ काम करने के लिए जैसा जमीन चाहिए ना, ऐसे ही आत्मा को जो गलत इच्छा हुआ भगवान से विलोग होके आनंद प्राप्त करने का, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। इसके लिए इसको क्षेत्र बोलते हैं। इसका माध्यम से ही वो क्या करेगा? अपना सब इच्छा पूरा करेगा। जिस प्रकार किसी भी काम करने के लिए जमीन नित्यांत आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को कुछ भी इच्छा पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये शरीर को भी क्या बताता है भगवान? क्षेत्र बताते हैं। और आप देखे होंगे बिना शरीर का कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आप सुने होंगे भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कौन होता है? अभी समझो ये शरीर मुझे भगवान ने 70 साल तक दिए हैं मनुष्य आत्मा को ये शरीर में रहने के लिए, और मैं 30 वर्ष उम्र में कुछ परेशानी के कारण मैं आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का अर्थ है जबरदस्ती ये शरीर को विनिष्ट कर लिया, तो शरीर तो विनिष्ट हो गया लेकिन आत्मा को और कुछ आबदी बचा हुआ इस शरीर में रहने का। तो जितना दिन तक भगवान ने निर्धारित किए हैं इस शरीर में रहने के लिए, उतना समय तक वो जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ घूमता रहता है, उसको ही भूत या प्रेत बोलते हैं। और उसका अनेक अतृप्त इच्छाएं रहती है। तो किस किसी का कभी कभी शरीर अपवित्र होता है ना, उस शरीर का माध्यम से प्रवेश करके वो अपना इच्छा को प्रकट करता है। अभी समझो मेरा शरीर अपवित्र है, कोई समझो प्रेत आत्मा घुस गया, तो मेरा आवाज में बात नहीं करेगा। जो व्यक्ति होगा वो अपना आवाज में बात करना लगेगा, अपना इच्छा प्रकट करना लगेगा। तो जीवात्मा को मन बुद्धि अहंकार के साथ अपना इच्छा पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको शरीर नित्यांत आवश्यक है। जब ये शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ऐसा घूमता रहता है, तो अपना इच्छा जो पूरा करने के लिए किसी का शरीर का सहारा लेता है। तो इसका अर्थ है, ये एक हम सहज समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इच्छा पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। और ये शरीर में दो रहते हैं क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला, एक आत्मा है एक परमात्मा है। तो इसके बाद भगवान बता रहे हैं ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ दो है, ये शरीर को जानने वाला, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो आगे विस्तृत जानकारी भगवान देंगे कि ये आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। जब तक भेद पता नहीं चलेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसके लिए आगे चल के भगवान बहुत सारे श्लोक बताएंगे जिससे कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है वो बताया जाएगा। उसके बाद भगवान ज्ञान बोल रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है ये जड़ और चेतन का बीच में जो भेद है ना, उसको जानने को ज्ञान कहते हैं। एक है जड़ और चेतन। जड़ चेतन बोलेगा तो हमारा शरीर है ना, जड़ और चेतन दोनों वस्तु का संयोग है। शरीर जड़ है लेकिन उसके अंदर चेतन वस्तु होने के कारण शरीर चलायमान है। अभी समझो शरीर मृत्यु हो गया तो अभी जो हम देखते हैं, सुन रहे हैं, बोल पा रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी वो उसका जो चेतन वस्तु चला गया, इसके कारण तो वो जड़ हो गया। तो जड़ और चेतन का बीच में जो भेद है उसको जानने को बोलते हैं ज्ञान। और ये शरीर के अंदर दो चेतन व्यक्ति है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, उसको बीच में जो भेद है उसको जानने को ज्ञेय या जानने का योग्य विषय वस्तु बोलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, ज्ञान क्या है? ज्ञेय, ज्ञेय या था जानने का विषय वस्तु क्या है? भगवान बोले शरीर और जो जड़ और चेतन का बीच में जो भेद को जानना ज्ञान है, लेकिन ये चेतन वस्तु जो है उसमें भी कुछ भेद है आत्मा और परमात्मा का बीच में, वो भेद को जानना भगवान बोलते हैं जानने का विषय वस्तु है। उसके बाद भगवान इस श्लोक में ये जो शरीर कैसे बना हुआ है, ये जो भौतिक प्रकृति कौन सी उपादान से बना हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे महाभूतानी, पांच महाभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर बोलते अहंकार, मिथ्या अहंकार। अहंकार दो प्रकार का होता है, मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। सत्य अहंकार क्या है, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का सेवा छोड़ के कुछ नहीं करूंगा, वो सत्य अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, यंत्री हूं, वैद्य हूं, ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार कितना प्रबल है आप देख सकते हैं। आप लोग सबका भी बॉम्बे का लोकल ट्रेन में से ये किया, सफर किए, आप किसी को थोड़ा धक्का दे दीजिएगा क्या करता है, मुझे धक्का दिया आपको मारने को आ जाएगा, उसको इतना मिथ्या अहंकार है कि बोला मुझे धक्का दे दिया। हम कभी कभी प्रचार के लिए ट्रेन में जाते हैं, हमको आश्चर्य होता है, इतना झगड़ा चढ़ने में, उतरने में, अंदर खड़ा होने में, किसको धक्का लग गया तो मुझे धक्का दे दिया, क्या गाली हुई मैं तुझे देख लूंगा क्या, वो मिथ्या अहंकार कि मैं बलवान हूं मुझे धक्का दे दिया, मिथ्या अहंकार, मिथ्या गर्व। ओ है सत्य अहंकार हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, महाभूतानि अहंकार बुद्धि, बुद्धि का, बुद्धि अच्छा और बुरा में भेद करना और बुद्धि का काम है जो शरीर हमारा होता है। फिर अव्यक्त, अव्यक्त बोलेगा तो तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, ये संसार में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, और हम कभी भी किसी भी गुण से प्रभावित हो सकते हैं, और जो गुणों से प्रभावित होंगे उसका अनुसार ही हम कार्य करेंगे। अभी मैं किसी को समझो एक दो तीन तमाशा मारूंगा, वो क्या करेगा, कौन सा गुण के ऊपर है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अभी समझो मैं आपको दो तीन तमाशा मारूंगा, क्या करेंगे प्रभु जी, चार प्रकार से आप कर सकते हैं। एक तो मुझे मार सकते हैं, तमोगुण में रहेंगे मुझे मार सकते हैं, रजोगुण में रहेंगे आप सोचेंगे सबका सामने मुझे मारा, मेरा अपमान हुआ, मेरा प्रतिष्ठा की हानि हुआ, तो जाके उच्च अधिकारी को बोल सकते हैं, मंदिर के जो टेंपल प्रेसिडेंट है किसको बोल सकते हैं। अगर सत्वगुण में होंगे ठीक है मार दिया कोई बात नहीं, मेरा कुछ पूर्व जन्म का पाप था कोई बात नहीं मार दिया, और उससे भी सत्वगुण को उच्च स्तर में रहेंगे तो आप प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी सबको मारा नहीं मुझे क्यों मारा, मेरा क्या गलती है, आप बताएंगे तो मैं सुधार करूंगा। तो वो सत्वगुण की उच्च अवस्था है। तो ये संसार में हमेशा तीन गुणों काम करता रहता है, शरीर में हमेशा रहता है। अभी हम क्या करेंगे, कैसा क्रिया करेंगे, वो निर्भर करते हैं उस समय हम कौन सा गुण में रहेंगे। उसके बाद भगवान बोल रहे थे महाभूतानि अहंकार बुद्धि एवं तो एवं च इंद्रियाणि दश एकम च, इंद्रिया है ग्यारह, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, उनका इंद्रियों का राजा मन। इसमें पांच जो ज्ञान इंद्रिया है, आंख नाक कान जीभा त्वचा, और कर्म इंद्रिया हाथ पैर गुदा लिंग। तो ये पांच कर्म इंद्रिया, पांच इंद्रिया मन हो गया। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे, इंद्रिया दस पंचोच इंद्रिया गोचरा, बोले ये इंद्रियों का पांच विषय वस्तु है, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद। ये 24 तत्वों से भगवान बोल रहे हैं सारा हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये जो भौतिक संसार भी बना हुआ है ये 24 तत्वों से बना हुआ है, और इसमें कुछ विकार होते हैं, कुछ ज्ञान इंद्रिया में होते हैं, कुछ कर्म इंद्रिया में होते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं ओ पंचमुहम सूक्ष्म इंद्रिया में होता है, कुछ स्थूल इंद्रिया में होते हैं। जो स्थूल इंद्रिया में होते हैं वो बोलते हैं इच्छा, इच्छा है किसका, मन का काम है। जब भी हम कुछ चीज को देखते हैं तो उसको क्या होता है, प्राप्त करने की इच्छा होती है। इंद्रिया किसी इंद्रिय विषय वस्तु को देखता है तो उसको प्राप्त करने का इच्छा होती है। तो ये इंद्रिय का क्या विकार है, अभी आप एक देख सकते हैं, आपको बहुत सारे चीज खाने का व्यंजन पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बोला जब तक आप देखेंगे नहीं उसको खाने की इच्छा नहीं होगा, लेकिन जब देखेंगे तो उसको खाने की इच्छा होगा। यानी जब इंद्रिया इंद्रिय विषय को देखेगा तो उसमें विकार होगा, तो वो क्या होगा, उसको खाने का इच्छा होगा। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं ये जो है जो स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिया दो प्रकार का है। सूक्ष्म इंद्रिया बोले तो जो दिखता नहीं है, मन बुद्धि अहंकार। स्थूल इंद्रिया जो हमको दिखता है, और ये इच्छा जो है वो स्थूल इंद्रियों का विकार है, द्वेष। दूसरा जो भगवान बोल रहे इच्छा, दूसरा है क्या बोल रहे, द्वेष। द्वेष घृणा शब्द इधर प्रभुपाद अनुवाद किया है, घृणा का अर्थ है दूसरा किसी को भलाई देखा नहीं जाना। अभी समझो हमारा कोई मित्र है, हम दोनों सहपाठी रह चुके, क्लासमेट रह चुके हैं, और दोनों समझो नौकरी करने लगे, मुझे 10,000 मिल रहा है, उसको 50,000 मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसे ईर्ष्या करना लगूंगा, देखो दोनों साथ में पढ़े, मुझे 10,000 है, उसको 50,000 मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं किसी का जो अच्छा ही देखा नहीं जाना, जिसको घृणा भी बोलते हैं, वो बोलते हैं वो भी क्या है, हम उसको देख के वो भी स्थूल इंद्रियों का काम है। और उसके बाद बता रहे हैं सुख और दुख। सुख क्या है, दुख क्या है, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, इसकी परिभाषा दी गई। सुख क्या है, हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, मन में कुछ इच्छा होता है, वो पूरा होने पर हम सुखी हो जाते हैं, पूरा नहीं होने पर क्या होता है, दुखी होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें संदेश सुख दुख की परिभाषा दी गई है। जैसा देखो अभी बच्चा परीक्षा दिया, उसका क्या इच्छा है, पास हो जाऊं, पास हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, सबको लड्डू बांटेगा, मिठाई बांटेगा। फेल हो जाएगा तो क्या है, उसका इच्छा का विपरीत हो गया, इसके लिए क्या हो गया, दुखी हो गया। तो ये है क्या है, स्थूल इंद्रियों का काम है, क्या है, कुछ इच्छा होती है, पूरा होने पर मनुष्य सुखी होता है, पूरा नहीं होने पर दुखी होता है। अभी कोई नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, नौकरी इंटरव्यू में पास हो गया, नौकरी मिल गया तो खुशी हो गया, क्या मिठाई बांटेगा, नौकरी लग गया मुझे। इंटरव्यू में फेल हो गया, नौकरी नहीं मिला, क्या होगा, दुखी हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा मन में इच्छा होती है, पूर्ण होने पर हम सुख खुश होते हैं, नहीं होने पर दुखी होते हैं, ये भी इंद्रियों का काम है। उसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं, इच्छा द्वेषो सुखम दिकम संगत चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेनो सविकार मुदावृतम। और जो धृति धौर्य ये सब क्या है, बुद्धि का सूक्ष्म इंद्रियों का काम है। तो यहां पर भगवान ने शरीर की व्याख्या करते, ये शरीर कैसा बना है और ये संसार कैसा बना है, ये सब जड़ है, चेतन उससे अलग है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में एक उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न पूछे थे, हे भगवान ऋषियों ने, ये इससे पहले श्लोक में भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदा भी विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र प्रदेश चैव हेतु मत भी निश्चित है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र तथा उन कार्यकलाप ज्ञाता के ज्ञान को वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्यकरण के समस्त तर्क सहित प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे ही प्रश्न उद्धव ने भगवान को पूछे हैं। ये जो बहुत ऋषि लोग, ये जो शरीर का जो उपादान, ये भौतिक संसार का उपादान विभिन्न रूप से वर्णन करते हैं। तो मैं खाली उद्धव जी का प्रश्न आपको सुनाता हूं, फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा उत्तर में भगवान कैसा उसका उत्तर देते हैं। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, ऋषियों ने सृष्टि की तत्वों की कितनी संख्या बतलाई है, मैंने आपकी मुख से कुल 28 का वर्णन सुना है। इस पर जीवात्मा, महत्त्व, मिथ्या अहंकार, पांच स्थूल तत्व, दस इंद्रिया मन, पांच सूक्ष्म इंद्रिया विषय तथा तीन गुण। किंतु कुछ विद्वान 26 तत्व बतलाते हैं, जबकि अन्य लोग उसकी संख्या 25 या 7, 9, 6, 4 या 11 और कुछ लोग 17, 16 या 13 बतलाते हैं। जब ये ऋषि ऐसा विविध प्रकार से सर्जक तत्व का गणना कर रहे थे तो उनका मन में क्या था? वे परम शाश्वत कृपा करके मुझे यह बतलाइए। ये है श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के अध्याय 22 के ये 1, 2, 3 श्लोक में उद्धव ने भगवान को प्रश्न पूछा है। तो कुछ लोग 3 बोलते हैं, कुछ लोग 7 बोलते हैं, कुछ 11, 16, 23, 27, 25, ये उनकी गणना क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो उनका गणना कैसा करते हैं आगे भगवान उत्तर दिए हैं। आप लोग को पास भागवतम होगा तो थोड़ा पढ़िएगा, अभी समय नहीं है, मैं लाया था बताने के लिए लेकिन समय हो गया है, फिर का भी होगा तो इसको थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उद्धव ने ऐसा प्रश्न पूछे है, जिस प्रकार इससे पहले प्रश्न पूछा ना, ऋषिदा बहुधा गीतम, ऋषि लोग अलग अलग बताते हैं। तो भगवान उद्धव पूछा, ये ऐसा जो गणना करते हैं उनका कैसे गणना है ये? तो उसके सुंदर भगवान उत्तर देते हैं, बोला प्रत्येक जो एक ऋषि होता है वो नहीं चाहता है कि दूसरा ऋषि का मत से सहमत हो, तो बोलते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूं। तो वो एक गणना करके बताते हैं थोड़ा अलग प्रकार से। वो बोला सबका गणना कैसा है भगवान, पूरा आगे स्पष्ट, जो 13 गिनते हैं कि कैसे गिनते हैं, जो 17 गिनते हैं कैसा, जो 3 गिनते हैं कैसा, जो 6 गिनते हैं कैसा, जो 7 बताते हैं वो कैसा, आगे से वर्णन करते हैं। आप लोगों के पास समय होगा तो जरूर पढ़िएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं